पृष्ठ संख्या 165, अध्याय 14। घटनाएं तेजी से घटने लगीं और घटनाएं भी ऐसी जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एक तो यह कि रुक्मी के बेटा हुआ। रुक्मी के बच्चा होने पर बसंती की प्रतिक्रिया अजीब सी हुई। टिमटिमाते दिए की लौ में जहां दाई रुक्मी की देखभाल कर रही थी और बसंती उसके पास बैठी थी, बसंती फटी फटी आंखों से रुक्मी की छटपटाहट को देखे जा रही थी। उसकी प्रसव पीड़ा में एक ओर तो बसंती गहरी वेदना का अनुभव करती, दूसरी ओर फटी फटी आंखों से वह यह भी देखना चाहती थी कि बच्चा प्रसूत में मर जाएगा या जिंदा पैदा होगा। और जब नन्हे मुन्ने का रुदन कोठरी में गूंजने लगा और रुक्मी हाथ पैर पटकने के बाद गहरी नींद सो गई, तो बसंती के मन में एक ओर तो गहरे संतोष का सैलाव सा उठा और दूसरी ओर घोर निराशा के साए भी घुमड़ने लगे। ऐसी ही मनह स्थिति बच्चे के पैदा होने के बाद भी बराबर बनी रही। एक बार उसे ऐसा भास हुआ जैसे रुक्मी का दूध सफेद न होकर काला है, और काला दूध पीने वाला बच्चा कैसे बच सकता है। मैं सच कहती हूँ बीबी जी, उसका दूध काला है। बसंती भागी हुई श्यामा बीबी को यह सूचना देने आई थी। दूध भी कभी काला हुआ है? पगली, इसका काला है, मैंने देखा है, मैला मैला, गंदा गंदा। श्यामा बीबी उसकी ओर देखती रही थी और बसंती के मन में उठने वाले पृष्ठ संख्या 166 भाव से अधिक स्वाभाविक और अनुकूल जान पड़ रहे थे। तू उसके बच्चे की चिंता नहीं कर, वह तो बचेगा या नहीं बचेगा भगवान जाने, तू अपनी फिक्र कर। बसंती को जो अड़चनों मुसीबतों के बीच भी लापरवाह रहा करती थी, अब सारा वक्त यही लगता जैसे परेशानियों के घटाटोप से घिर गई है। सारा वक्त उसके मन को धुकधुकी लगी रहती, बात बात पर कुढ़ने खींचने लगती। रुक्मी के प्रसूत को 2 महीने बीत चुके थे। रुक्मी के काले दूध से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, पर बसंती के अंदर पहले से ही धुकधुकी चल रही थी। हर बार जब रुक्मी अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती तो बसंती अजीब नजरों से उसे देखने लगती। हर बार जब रात को बच्चा रो उठता तो बसंती हड़बड़ा कर उठ बैठती कि शायद बच्चे के पेट में सूल उठा है। कभी कभी उसे सचमुच लगता कि बच्चे की सांस उखड़ी हुई है। उसे इतना भी भास होता कि बच्चे की चमड़ी नीली पड़ रही है और शरीर ऐंठ रहा है। इसे क्या हो गया है? देखो तो कैसे हाथ पांव पटक रहा है। वह एक बार खाट के पास खड़ी चिल्लाने लगी थी। उसकी आंखें टेढ़ी सी हो रही थीं। दीनू ने ध्यान से बच्चे को देखा। बच्चे के हाथों को अपने हाथ में लिया, हौले से उसकी छाती पर अपना हाथ रखा। बच्चे का सांस समगति से चलने लगा। कुछ भी तो नहीं है इसे, क्या है? दीनू ने अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। यों ही चिल्लाए जा रही है, यह रोया जो ऐसे था। ऐसे भी कभी बच्चा रोता है? जरूर उसके पेट में सूल उठा होगा। एक झापड़ दूंगा तेरे मुंह पर, दीनू ने उल्टा हाथ बसंती की ओर उठाते हुए कहा। सूल उठा था तो अब चुप क्यों हो गया है? मुझे क्या है, अपना गंदा दूध पिलाती है, अपने बच्चे को बीमार करेगी, मुझे क्या है? रुक्मी को भी अब बसंती बुरी लगने लगी थी। उसे बसंती से डर लगने लगा कि कहीं वह उसके बच्चे को कुछ खिला नहीं दे। पुल पर बैठने वाले एक ज्योतिषी ने भी रुक्मी का हाथ देखकर बताया था कि घर के किसी व्यक्ति का साया उसके बच्चे पर भारी है। रुक्मी ने यही समझा था कि वह बसंती का ही साया होगा। बच्चे के जन्म से पहले जो बसंती उसकी नज़रों में सहेली थी, उसकी शुभचिंतिका थी, बच्चे के जन्म के बाद वही बसंती डायन बन गई थी। बसंती की बड़ी बड़ी आँखें ही उसे किसी डायन की आँखों जैसी लगने लगी थी। उधर बसंती सारा वक्त बेचैन रहती। काम पर जाते समय वह पहले पप्पू को घर छोड़ जाया करती थी। दीनू और रुक्मी ही उसे खिला पिला देते थे, पर अब वह उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। वह आंगन में खेलता रहता और खुद घर में चौकावर्तन करती रहती, पर ऐसे काम कर पाना कठिन था। बाबू लोगों और उनकी पत्नियों को यह मंजूर नहीं था। पप्पू के हाथ से कुछ टूट जाता या वह फर्श गंदा कर देता तो मुसीबत आ जाती। उसे गोद में उठाकर ले जाना और जगह जगह उठाए फिरना भी आसान नहीं था, पर उसके लिए चारा भी क्या था। एक बार जब वह उसे दीनू के पास छोड़ आई थी तो मुश्किल से एक घर का काम निपटा पाई होगी कि भागती हुई वापस लौट गई थी और उसे उठाकर ले आई थी। बसंती के स्वभाव की सारी लापरवाही छूमंतर हो गई थी और उसकी जगह अंदर ही अंदर धुएं से भरी आग सुलगने लगी थी। हर बार जब रुक्मी का बच्चा रोता तो बसंती की उम्मीदों को चाबुक सी लगती कि क्या मालूम अब की बार काले दूध ने अपना असर कर डाला हो और सचमुच बच्चे का बदन ऐंठने लगा हो। इधर रुक्मी भी पहले वाली रुक्मी नहीं रह गई थी, जिसकी आंखें बसंती की बातें सुनते हुए विस्मय और आश्चर्य से फैल जाया करती थीं। अब वह बात बात पर कुढ़ने और बोलने लगी थी, और जब कुछ बोलती तो दीनू का झापड़ पहले से तैयार रहता था। स्थिति अब यह बन गई थी कि इस छोटी सी कोठरी में जैसे दो सांप लौट रहे हों। रुक्मी अपने बच्चे को बसंती के साये से बचाती थी और बसंती पप्पू को रुक्मी के साये से। दोनों का मन सारा वक्त शंकित बना रहता और दोनों की आंखों में एक तरह का तिरछापन आ गया था। उसी के साथ एक और उलझन भी पैदा हो गई थी। बस्ती में बसंती की पृष्ठ संख्या 168 साख जाती रही थी। उजले कपड़े पहने कभी भड़कीली साड़ी तो कभी सलवार कमीज डाले, और बनी ठनी अपने बच्चे को गोद में लिए जब वह बस्ती की सड़कों पर जा रही होती तो गृहिणियों में खुसफुस होने लगती कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि छैली बनी घूमती है। श्यामा बीवी ने भी अपनी एकाध सहेली को बता दिया था कि उसे बसंती के थैले में से हॉर्लिक्स का डिब्बा मिला था, और यह बात बहुत स्त्रियों तक फैल चुकी थी। उसके साथ पिछली घटनाएं भी जुड़ गई थीं कि वह किसी आदमी के साथ भाग गई थी, कि वह चाल चलन की अच्छी नहीं है। पहले भाग गई थी और अब एक ऐसे आदमी के साथ रह रही है जिसकी पहले से घरवाली है। यहीं तक बस होता तो कोई बात न थी, पर एक दिन बाबू जगन्नाथ के घर में, जहाँ बसंती काम करती थी, उस पर घड़ी चुराने का साफ इल्जाम लगाया गया। अब बसंती ने सचमुच घड़ी चुराई थी या नहीं, भगवान जाने। उम्मीद तो नहीं थी कि बसंती ने ऐसा काम किया हो, क्योंकि इस प्रकार के जीवन से ही तो वह अपने को उबारने की कोशिश करती आ रही थी। पर फिर भी किसी के दिल की कौन जाने। नतीजा यह हुआ कि उसे चौकाबर्तन के काम पर से हटा दिया गया। घर का मालिक इतना बिगड़ा था कि उसने कहा था, अगर बसंती कभी उस तरफ आई भी तो वह उसकी टांगे तोड़ देगा और उसे हवालात में बंद करवा देगा। बसंती के पास 5 घरों की जगह 3 घर रह गए थे, और इससे गुजर नहीं चलती थी। दीनू को चौकाबर्तन के काम से चिढ़ थी और अन्य किसी काम के लिए वह हाथ पैर नहीं हिलाता था। तभी बसंती को यह सूझा था कि घरों में चौकाबर्तन का काम छोड़कर कहीं तंदूर लगा ले। उधर खाली जमीन पड़ी है बीवी जी, झट से मैं तंदूर लगा लूंगी, 2 पैसे रोटी लगवाई लिया करूंगी। बहुत लोग हैं जो घर पर रोटी पकाना नहीं चाहते, पर तंदूर लगाने के लिए पैसे कहाँ से आते। जब से श्यामा बीबी ने उसके मन में यह बात डाल दी थी कि रुक्मी के बच्चा हो जाने पर बसंती की हैसियत 2 कौड़ी की रह जाएगी, बसंती की नींद हराम हो गई थी और दिन प्रतिदिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले श्यामा बीबी की बातें वह लापरवाही से टाल जाया करती थी। कुछ देर के लिए उसने पृष्ठ संख्या 169 श्यामा बीबी के घर जाना भी छोड़ दिया था, विशेषकर जब श्यामा ने उसे आंगन में सोने की मनाही कर दी थी और अपनी सहेली के घर भेज दिया था, जहाँ से 2 ही दिन बाद वह पकड़ गई थी। पर दीनू के लौट आने पर वह भागती हुई फिर से श्यामा बीवी के घर की सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। दिल की बातें कहने के लिए वह किसके पास जाती। श्यामा बीवी की बातें उसके लिए अनूठी हुआ करती थीं, पर जब से रुक्मी के साथ बसंती रहने लगी थी, अनूठी होते हुए भी श्यामा बीवी की बातें बसंती के मन पर गहरा असर करने लगी थीं, और दिन प्रतिदिन वह अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी। अब आए दिन वह श्यामा बीबी के घर पहुंच जाती थी और हर बार ही पहले से कहीं अधिक अशांत और उद्विग्न होकर लौटती थी। सारा वक्त उसके मन में तनाव सा बना रहता, सारा वक्त जैसे कुछ आवाज़ें सुनती रहती हो जो किसी और को सुनाई नहीं पड़ रही हों। बसंती, जिसे कभी अपने भविष्य का ख्याल तक नहीं आता था, अब श्यामा बीवी के साथ बैठकर तरह तरह के मंसूबे बनाती रहती थी। पर अकेले में जब कभी उसका मन बहुत बेचैन हो जाता तो वह अपने आप से कहती, यह मुझे क्या हो गया है। जब बरडू पीछे पड़ गया था तब भी मैं बेचैन नहीं थी, जब बापू घसीट कर ले गया था और लंगड़े दर्जी से बांध दिया था तब भी मैं इतनी दुखी नहीं थी, पर अब दीनू भी मेरे पास है और मेरा बच्चा भी, तो मैं क्यों सारा वक्त तड़पती रहती हूँ। कभी कभी धूमिल सा उसे इस बात का भी भास होता कि अगर वह श्यामा बीबी के घर जाना छोड़ दे तो शायद मन में इतनी बेचैनी नहीं होगी। वह जैसा उसका मन कहेगा वैसा ही करेगी। श्यामा बीबी के पास बैठने पर उसे लगता जैसे श्यामा बीबी हर बार कोई पर्दा उठा देती हैं और पर्दे के पीछे कोई डरावना घिनौना जंतु अपने जहरीले दांत और लाल लाल आंखें दिखाता हुआ सामने आ खड़ा होता है। तभी एक दिन रुक्मी के नन्हे बेटे को सचमुच काले काले दस्त आने लगे। कोठरी में सभी जाग गए थे। बसंती ने दिए की झपकती अस्थिर रोशनी में देखा तो उसे लगा जैसे बच्चे का शरीर शिथिल होकर लंबा हो गया है, मुट्ठियाँ भी अध खुली हैं और आंखें भी। जब बच्चा कराहा तो उसे वह निस्सहायता का क्रंदन जान पड़ा। ऐसी आवाज़ जो हाथ पैर पटकते सामान्य बच्चे की ना होकर ऐसे बच्चे की हो जो आधा इधर और आधा उस पार पहुंच चुका है। पृष्ठ संख्या 170। इसे क्या हो गया है, बसंती ने चिल्ला कर कहा। अभी तक रुक्मी घबराई नहीं थी, समझ रही थी कि पहले की ही भांति बच्चे को दस्त आने लगे हैं और पेट में दर्द उठा है, पर बसंती की आवाज सुनकर वहां थर थर कांपने लगी। क्या है मेरे बेटे को, क्या हो गया है? और रुक्मी भी वैसे ही कराहने लगी जैसे उसका बेटा कराह रहा था। दिनू अभी भी नींद में था। उसे रुक्मी ने झिझोड़ कर उठाया तो वह आंख मलता हुआ उठा और बेटे की ओर मुड़ गया। क्या है, कुछ भी तो नहीं है, दस्त तो इसे रोज लगते रहते हैं, इसे बना दे सौंफ का पानी जैसे वैद्य जी ने बताया है। देखो तो कैसा हो रहा है, तुम कहते हो इसे कुछ भी नहीं, बसंती ने कहा और वह आंखें फाड़े बच्चे की ओर देखे जा रही थी। मैंने पहले ही कहा था रुक्मी का दूध काला है, दीनू ने आंखें तरेर कर बसंती की ओर देखा। क्या बके जा रही है, उसने कहा और खाट से उठकर खड़ा हो गया। देखते नहीं इसकी सांस कैसे चल रही है, बसंती बोली। रुक्मी को काटो तो खून नहीं, उसकी त्रस्त आंखें बार बार दीनू की ओर उठ रही थी। उसकी आवाज इतनी छीड़ इतनी कांपती सी थी कि दीनू भी असमंजस में पड़ गया था। इस डायन ने मेरे बच्चे को कुछ खिला दिया है, रुक्मी रोते हुए बोली। मैंने, बसंती जवाब में बोली, मैंने इसे क्या खिलाया है, मैं क्या खिलाऊंगी। बच्चा अभी भी ऊँ ऊँ किए जा रहा था और उसकी सांस उखड़ी हुई थी। इसके मुंह में पानी तो डाल, तीनू बोला। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। यदि बसंती इतना चिल्लाती नहीं तो वह बच्चे की तकलीफ को सदा की भांति मामूली सा पेट दर्द ही समझता और करवट बदल कर सो जाता। पर अब की बार वह भी घबरा गया था। तेरा दूध काला है तो मैंने क्या किया है, बसंती बोली। उसकी आंखें बच्चे पर लगी थीं। बसंती को लगा जैसे उसका पेट भी फूला हुआ है और उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही है। इन लोगों को यह क्यों नजर नहीं आ रहा था। दिए की बार बार झपकती अस्थिर रोशनी में बसंती को लगा जैसे मौत के साए कुर्सी में उतर आए हैं और रुक्मी के बच्चे की खाट के आसपास मंडराने लगे हैं। बच्चे को कंपकपी हुई और उसने फिर एक बार दस्त कर दिया। उसने मुट्ठियां भींची और फिर छोड़ दीं। इस बीच रुक्मी पानी ले आई थी और रोती हुई बच्चे के मुंह में बूंद बूंद करके डालने लगी थी। बसंती ने देखा कि रुक्मी के हाथ कांप रहे हैं और पानी बच्चे के मुंह के बाहर गिर रहा है। इस डायन ने मेरे बच्चे को कुछ खिला दिया है, हाय मैं क्या करूं, रुक्मी बिलख कर बोली। मैंने खिलाया है, मैं क्यों खिलाऊंगी, बसंती ने ठंडी सी आवाज में जवाब दिया। स्वयं बसंती को ही मन ही मन ऐसा भास होने लगा था कि उसी ने बच्चे को कुछ खिला दिया है और इसका पता रुक्मी को चल गया है। जिसने मेरे बच्चे को कुछ खिलाया है उसका अपना बच्चा मरे, रुक्मी की कराहती तड़पती आवाज ने कहा और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। तू मेरे बच्चे को क्यों गाली देती है, मैंने क्या किया है। पर बसंती की आंखें अभी भी बच्चे पर लगी थीं। दीनू को अपनी माँ का टोटका याद आया। वह दस्त लगने पर बच्चे के पेट को कपड़े से अच्छी तरह लपेट देती थी और उसकी गरमाइश से पेट का दर्द धीरे धीरे दूर होने लगता था। उसे और तो कुछ नहीं सूझा, उसने बच्चे को साफ करके उसकी कमर के आसपास कपड़ा लपेट दिया। पर बसंती को लगा जैसे बच्चे की आंखें टेढ़ी हो रही हैं और उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी है। तभी बसंती जैसे सिर से पांव तक कांप उठी, उसके मुंह में से भी कराह सी निकली, सारे शरीर को झिझोड़ देने वाला क्रंदन, हाय इसे क्या हो गया है, तुम देखते रहे हो करते कुछ भी नहीं। और दूसरे क्षण बसंती चील की तरह बच्चे की देह पर झपटी, उसे दोनों बाहों में उठाया, चादर से लपेटा और दरवाजा पृष्ठ संख्या 172 खोल खोलकर भागती हुई बाहर निकल गई। वह मेरे बच्चे को मार डालेगी, मार डालेगी, रुक्मी चिल्लाई। दिनू हतबुद्धि सा देखे जा रहा था जब रुक्मी चिल्लाती हुई उठी और दरवाजे की ओर लपकी। दिनू दरवाजे के पास जाकर बसंती को पुकारने लगा, लौटा बसंती, लौटा, मैं कहता हूँ, इसे कहाँ ले जा रही है? प्रभात के झुटपुटे में मैदान के पार पेड़ के पास उसे बसंती का भागता साया नजर आया। सर्दी का मौसम था और धुंध गहरी हो रही थी। बसंती भागती हुई धुंध के कोहरे के धुंधलके में खो गई। वह मेरे बच्चे का गला घोंट देगी, वह उसे मार डालेगी, मेरा बच्चा ठिठुर कर मर जाएगा, रुक्मी बिलखती जा रही थी। बसंती लौटा, दिनों ने फिर चिल्ला कर कहा। जाओ ना, हाय, जाओ, मेरे बच्चे को मार डालेगी, रुक्मी ने फिर तड़प कर कहा। दिनू कोठरी में से बाहर निकला, बसंती को पुकारता हुआ उसके पीछे पीछे गया, पर बसंती आंखों से ओझल हो चुकी थी। बसंती न सड़क पर नजर आई, न ताल के पास, न झाड़ियों के झुरमुट के निकट जो ताल के किनारे खड़ा था। दिनू लौट आया और चुपचाप आकर खाट पर बैठ गया। रुक्मी जमीन पर औंधी पड़ी, हाथ पांव पटक रही थी और कराहे जा रही थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रोना बंद कर, सभी निष्क्रिय लोगों की भांति दीनू ऊंचा ऊंचा बोलकर अपने को भी और रुक्मी को भी आश्वस्त करना चाहता था कि खतरे की कोई बात नहीं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उसके बेटे को सांखियां दे दूंगी। तुम बैठे मुंह ताकते रहे हो और वह डायन मेरे बच्चे को उठा कर ले गई है। प्रातः के झुटपुटे में बसंती एक डॉक्टर के घर के बाहर मंडरा रही थी और 6 बार दरवाजा पीट चुकी थी। कुछ ही क्षण रुकने के बाद वह फिर से दरवाजे पर घूंसे मारने लगती। डॉक्टर साहिब, डॉक्टर जी, दरवाजा खोलो, डॉक्टर जी, दरवाजा खोलो। आखिर जब अंदर की बत्ती जली और डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो एक बेसुध सी हांफती हुई लड़की बच्चे को बाहों में लिए खड़ी थी। इसे देखिए तो डॉक्टर जी, इसे काले दस्त आ रहे हैं, इसका सांस भी कैसे चल रहा है? डॉक्टर बड़बड़ाया, न वक्त देखते हैं, न जगह देखते हैं, दौड़े चले आते हैं। पर बसंती के व्याकुल घबराए हुए चेहरे को देखकर नरम पड़ गया। अंदर ले आओ, डॉक्टर ने कहा और अंदर की ओर घूम गया। डॉक्टर ने बच्चे को मेज पर लिटाया, कमर के आसपास लपेटा कपड़ा खोला, उसके पेट को टटोल टटोल कर देखा, आंखों की पलकों को उठा कर देखा, देर तक अच्छी तरह मुआयना करता रहा। इसकी आंखें कैसी हो रही हैं डॉक्टर जी? उधर जाकर बैठ जा, डॉक्टर ने बसंती से रुखाई के साथ कहा। बसंती पीछे बीछे बेंच पर जाकर बैठ गई। बच जाएगा ना डॉक्टर जी, उसने भर्राई हुई व्याकुल आवाज में कहा। डॉक्टर बच्चे पर झुका, चुपचाप मुआयना करता रहा। क्या है बच्चे को? इसे काले दस्त आ रहे हैं डॉक्टर जी। कहाँ काले दस्त आ रहे हैं? और बच्चे का पोतला उठाकर बसंती के सामने इसे बढ़ाते हुए बोला, कहाँ है काले दस्त? डॉक्टर जी, तो यह बच जाएगा ना? इसे क्या हुआ है? इसे दस्त आए डॉक्टर जी, इसका सांस उखड़ने लगा था, इसकी आंखें टेढ़ी हो रही थीं, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, मैं इसे उठाकर ले आई। डॉक्टर बहुत बोलने वाला आदमी नहीं था, उसने कागज लेकर नुस्खा लिख दिया और सिर से पांव तक घबराई कांपती बसंती की ओर मुस्कुराकर बोला, इसे 3-3 घंटे के बाद देती जा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बसंती उठ खड़ी हुई थी और डॉक्टर की ओर देखे जा रही थी। उसके पृष्ठ संख्या 174 अंग अंग में गहरे संतोष की लहर सी उठ रही थी। दिन चढ़ आया था जब बसंती रुक्मी के बच्चे को छाती से लगाए कोठरी की ओर लौट रही थी। सूरज की पहली किरणों में कोहरे की धुंध छटने लगी थी। बसंती को लग रहा था जैसे कोई दुःस्वप्न टूट गया हो और आसपास की चीजें फिर से सुहावनी नजर आने लगी हैं, जैसे दुःस्वप्न के भंग होने पर उसने आंखें खोल दी हों और सारा संसार शांत और प्रातः की किरणों में नहाया नहाया नजर आने लगा हो। उसका रोम रोम महसूस कर रहा था कि रुक्मी का बच्चा उसके कंधे से लगकर गहरी नींद में सो रहा है और उसकी सांस बड़ी समतल, बड़ी धीमी चल रही है। मुझे क्या हो गया था? बसंती बार बार अपने से एक ही सवाल पूछती चली जा रही थी। कोठरी में पहुंचकर उसने बच्चे को रुक्मी की गोद में रखा। ले अपना लाल, मैं दवाई लेने जा रही हूँ, और बक्से में से पैसे निकालने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे पास पैसे नहीं थे, पर डॉक्टर जी ने फीस मांगी ही नहीं।